Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhakti Shakti Samta Vasal Mi Matao Kishni Mi Vahino Aap Sarv Bandhu Taittiriya Aranyak Ki इस तैतरीय उपनिषद को लेकर के ओम की उपासना विषयक चर्चा यहां की जा रही है। किस प्रकार से ओम की उपासना की जाती है, क्या इसका प्रारूप है, इसको यहां क्रम से बतलाते हुए संकेत किया कि ओम में जो यह प्रसिद्ध तीन व्याहृतियां हैं और चौथी व्याहृति जो महानाम से कही गई है, इन व्याहृतियों के अनुरूप चिंतन करते हुए हम ओम की उपासना करें। व्याहृतियों का स्वरूप बतला दिया गया, जैसे भू भव स्व, भू शब्द का अर्थ बतलाया, भू का मतलब क्या है तो यह लोक, और उसके साथ कहा अग्नि और फिर आदित्य और फिर ब्रह्म, इस प्रकार से उसकी चर्चा की। तो ये भू के स्वरूप को बतलाते हुए अब इसमें चिंतन किस प्रकार से करना है, तो इसको ही बतलाते हुए संकेत किया कि इसका चिंतन करते समय हमें यह पहले देखना होगा कि चिंतन करने वाला जो मैं हूं वो मैं क्या हूं, तो अपने को हम क्या देखें। तो सामान्यतया हम एक पंचभूतों के संघात रूप इंद्रिय अंतःकरण आदि को लेकर के ही अपने को क्या समझते हैं कि मैं हूं, ऐसा मैं जानता हूं। अब ऐसा जानने वाला जो मैं, उस मैं के ही क्या है, तो कहा अंतःकरण है, हृदय, और उसी अंतःकरण को लेकर के वो अपने को जान रहा है। तो अब जो उसका हृदय है, उस हृदय को लेकर के ही चर्चा की कि जो उसका ये हृदय है, वह हृदय जो है एक मांसपिंड है शुक्ल वर्ण का, और उसको उपमित करते हुए बतला दिया कि वो कमल के पुष्प के समान उसे मानो। जैसे कमल का पुष्प होता है, कहा उसी प्रकार से उसका यह हृदय है, और उस हृदय के अंतर्गत आकाश है, और उस आकाश के अंतर्गत क्या है, कहा मनोमय पुरुष है। ये संकेत किया, कैसा पुरुष है, कहा मनोमय। वह जो मनोमय पुरुष है, वह मनोमय पुरुष ही कैसा है, तो और उसके रूप में बतलाया, कहा भी वह अमृत रूप है, और अमृत रूप होते हुए वो शांतादि स्वभाव वाला है और हिरण्यगर्भ रूप है, ऐसा उसके लिए संकेत किया। अब जो वह पुरुष है ये कहकर के संकेत किया और कहने लगे कि मैं जो समझ रहा हूं कि मैं हूं, इसमें क्या फर्क है, ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र जो कहता। तो अब जिसको मैं करके जानता हूं, तो मैं करके तो किसको जानता, मैं इस इंद्री और प्राण और इस शरीर के संघात को ही मैं करके जान रहा हूं, इससे पृथक अभी जान रहा नहीं। अब भले ही हम कहें कि मैं विद्वान हूं, तो जब मैं ये कहूंगा कि मैं विद्वान हूं तो किसको लेकर के कह रहे, तभी हम अपने उस अंतःकरण को लेकर के ही और इस संघात को लेकर के ही ये कह रहा हूं कि मैं विद्वान। तो ये जो हमारा जानना है वो जानना कैसा है, तो कहा मैं रूप से इस संघात को जानना और संघात रूप में ही अपने को जानना, संघात रूप से अपने को अभी पृथक नहीं जानना। अब यहां पर चर्चा की कि यह जो तुम्हारा संघात रूप है और संघात रूप में जो तुम अपने को संघात रूप से जान रहे हो, इसी संघात में जो तुम्हारा हृदय और उस हृदय के अंदर जो आकाश है, और उस आकाश में क्या चीज है, तो उसको कह दिया मनोमय पुरुष है और उसके विशेषण दे दिए वो अमृत रूप है और वो हिरण्य रूप है, ये उसके विशेषण दिए। वह जो पुरुष है तो वो पुरुष और मैं, इन दोनों में अंतर क्या है, तब ये समझ में आता है जब ये विचार करते हैं कि वह जो पुरुष है उसके लिए ऐसा सुना जा रहा है और यहां भी निर्वचन किया जा रहा कि वो अमृत है। अमृत का मतलब है उसकी मृत्यु नहीं, सीधा से ये समझ लो उसकी मृत्यु नहीं है। और हम जब अपने इस संघात रूप मैं को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता, तो हमको ये पता चलता है कि हमारा तो जन्म हुआ है और हमारी मृत्यु भी निश्चित है, क्योंकि जन्म हुआ तो मृत्यु भी निश्चित। और यहां पर जो कहा जा रहा कि हृदय के अंतर्गत जो पुरुष है मनोमय आदि वो अमृत रूप है, तो वो यदि अमृत रूप उसकी मृत्यु नहीं होती है, तो ऐसा यदि है तो इसका मतलब है कि वो कोई दूसरा है और मैं कोई दूसरा, ये संशय होता ऐसा जो है हृदय में आएगा। जब यदि वही मैं हूं तो मेरी भी मृत्यु होनी चाहिए नहीं, और यदि वो मैं नहीं हूं तो मेरी मृत्यु होती और वो इसमें विद्यमान उसकी मृत्यु नहीं होती, तो ये कैसे, ये बात समझ में नहीं आती। और कुछ लोग तो ये कहेंगे कि जब वो इसी संघात में है, इसी हृदयाकाश में है, तो इसकी संघात की जब मृत्यु होती है तो इसमें रहने वाले की भी मृत्यु हो जाए, तो फिर उसे अमृत कैसे कहा। ये सब हमारे अंतर्गत जो है ये सारे संदेह पैदा हो, उसी को समझाते हुए यहां संकेत करते हैं कि वह अमृत रूप है, हिरण्यमय है। हिरण्यमय का मतलब है प्रकाश रूप, ज्ञान रूप है और अमृत स्वरूप। अब इस प्रकार से यहां पर बतलाते हुए फिर उसके लिए ही संकेत क्या किया था कि वह जो पुरुष है तस्मिन अयम पुरुष, ये जो संकेत किया, वह जो पुरुष है वो मनोमय है और मनोमय के साथ अमृत और हिरण्यमय है, और वह जो पुरुष इस प्रकार का जो पुरुष है तो अयम पुरुष, तो इससे संकेत क्या करते, तो अयम शब्द कहां पर भी हो तो अयम शब्द अत्यंत समीप के लिए प्रयोग होता है। अयम शब्द का प्रयोग जो है कहां होता है, यहां पर वह आदि प्रयोग नहीं करते, माने यह क्या है, ये ठीक है ना, तो ये जो पुरुष है यही संकेत कर दिया ये कैसा है, तो उसके लिए संकेत किया गया कि वो अमृत रूप है। तो ये जो अमृत रूप है तो इसका मतलब मैं करके हम जिसको कह रहे वो कैसा है, तो कहने लगे अब इसी को सोचना है, तब कैसे सोचा जाए, तब भू नाम की व्याहृति के अंतर्गत ये सारे संकेत किए कि वो को लेकर के हमने क्या समझना है, तो वो को लेकर के हमको यह सारा लोक समझना, किसको लेकर के, तो हम इस चीज को मैं और अयम, ये जो दो चीजें हमारे सामने आ गई कि यह पुरुष और मैं पुरुष, ये दो बातें आ गई ना, तो मैं पुरुष और यह पुरुष, इन दोनों पुरुषों में क्या फर्क है और दोनों में क्या फर्क हो करके दोनों की क्या कर्तव्यता है और दोनों की क्या स्थिति है, ये हमें विचार करना। और ये विचार करने के लिए ही यहां पर ये संकेत किया कि वह जो भू नाम की व्याहृति है उस व्याहृति के अंतर्गत कहा कि यह संपूर्ण लोक, माने जो पृथ्वी आज लोक हम कहते हैं वह संपूर्ण लोक, वो भू व्याहृति का क्या है, कहा एक अवयव रूप है, भू व्याहृति से ही होने वाला है, और उसी में अग्नि और उसी में जो है देव और वेद, ये संपूर्ण जो है बतला दिया किसके अंतर्गत, कहा भू व्याहृति के अंतर्गत। अब जब ये सब भू व्याहृति के अंतर्गत है तो ये संपूर्ण जब लोक कह दिया गया, तो संपूर्ण लोक से यदि हम विचार करें तो संपूर्ण लोक तो मैं नहीं हूं, संपूर्ण लोक जब कह दिया गया उस भू विहारति के अंतर्गत, तो संपूर्ण लोक तो मैं नहीं, मैं उस लोक का एक अवयव मात्र हूं, हमको तो ऐसा ही प्रतीत होता। अब जब लोक का एक अवयव मात्र हूं और ये संपूर्ण लोक उस व्याहृति का, भू नाम की व्याहृति का जो है संपूर्ण लोक क्या है, तो भू नाम व्याहृति का रूप है ऐसा समझो, या उसी का एक अवयव, या भू नाम की व्याहृति से ही हम समस्त लोक को समझें। अब जो इस प्रकार का जो जब संकेत किया गया तब फिर हमारे अंदर होता है, तो इसका मतलब हम एक परिच्छिन्न हूं, एक सीमित हूं, और हमसे भी कोई अपरिच्छिन्न और व्यापक ये लोक है। तो इस लोक में होने वाला जो पुरुष और मैं पुरुष, इन दोनों में कुछ अंतर दिखाई देता, और ये धारणा को लेकर के नाना मत मतांतर जो है हमारे यहां उदित हो गए, चाहे द्वैतवाद हो, त्रैतवाद हो, ये सब और अद्वैतवाद आदि की जो चर्चाएं हैं, तो ये सारे के सारे जो है हमारे यहां उपस्थित हो जाते हैं। तो अब यहां संकेत ये कर रहे हैं कि अब यहां विचार हमें कैसे करना है, तो कहने लगे विचार ऐसे करो, आप अपनी व्यष्टि या अपनी व्यक्तिगत जो स्थिति है उस स्थिति से पहले विचार करो, और उस स्थिति से जब विचार करते हैं तो मैं और मनोमय, तो इसका मतलब मैं हूं और मेरा मन है, इतना हम सब लोग जानते हैं ना, और मनोमय कह करके थोड़ा ऐसा यहां पर भी समझ लो, उसे तो मनोमय कहा ही कि जब मैं होता है तभी मन होता है, क्या होता है, जब मैं होता है तभी मन होता है, और ये भी है कि जब मन होता है तभी मैं होता है। आप मैं कब कहते हो, कहा मेरा मन जब है तब मैं कहता हूं, और जब आप होते हो तभी मैं कहते, लेकिन यहां एक वितरेक और देखा जाता, क्या वितरेक देखा जाता, कहने लगे मैं तो सदा रहता है लेकिन मन सदा, कहने लगे ये कैसे, इसलिए मैं का स्फुरण भी वहां नहीं लेकिन मैं रहता है, तो कहां देखते हो, तो आप जानते हो सुसुप्ति में, सुसुप्ति में मन की सत्ता नहीं है, दबी है या लीन है क्या है, लेकिन मैं जो है वहां प्रस्फुट नहीं, प्रस्फुटित तो मैं नहीं है, वो मन नहीं है, लेकिन मन न होने से उस मैं को हम मैं करके नहीं जानते, लेकिन वहां भी हम जो है उसका अभाव देखते नहीं, ऐसा नहीं कहते हो कि सुसुप्ति में मैं था ही नहीं, ये कोई नहीं कहता, सुसुप्ति के अंतर्गत जागृत में आकर के ऐसा कहने वाला कोई नहीं कि सुसुप्ति में मैं रहा ही नहीं है, ये तो कहते हो कि सुसुप्ति में हमारे मन इंद्री आदि सब लीन हो गए, हमें कुछ भी पता नहीं था, ये सब तो कहते, लेकिन मैं नहीं था ऐसा कोई नहीं कहता, तो मैं तो वहां रहा लेकिन अभाव किसका मिला, तो वहां पर अभाव मन आदि का अभाव था, तो मन की सत्ता का वहां अभाव था लेकिन मैं फिर भी वहां था। अब ये जो चर्चा यहां पर इतनी हुई, तो इसलिए जब वहां पर मैं था तो वो मैं कैसा था, वहां पर जो मन से रहित मैं था, जहां पर मन की सत्ता वितरेक रूप से जब मैं था, तब वहां पर जो मैं की स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, तो आप सब कहते हो वो शांत थी, सुखद थी, ये सब बोलते हो, आनंद रूप थी, ये सब बोलते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वह जो आनंदमयता सुखद रूपता और उसकी सत्ता, तो माने उसमें करण, क्या कहेंगे, करण और करणों से होने वाला कार्य, उसका वहां पर उपशमन हो गया था, यही कहोगे, समाप्ति नहीं कहते, क्या कहते हैं वहां, करण और जो करणों के द्वारा होने वाला कार्य और कार्य से होने वाला जो फल, इनका वहां उपशमन हो गया था। सुसुप्ति में जब कार्य कारण को लेकर के और उन कार्य को लेकर के होने वाला फल का उपशम हो जाता है, मन उनका उपशमन हो जाता है, तब जो है वहां पर क्या स्थिति होती है, तो कहने लगे वहां शांत स्थिति होती, और शांत स्थिति होती है वो सुखद स्थिति होती है, आनंद रूप स्थिति होती है, वो विक्षेप आदि या दुखद या शोक आदि वाली स्थिति नहीं होती, इतना हम दृष्टि के अंतर्गत सभी लोग समझते हैं, इतना सबको पता चलता। अब इतना पता चलता है तो वहां पर फिर हमारी उत्थान स्थिति होती है और फिर वही कर्ण कार्य आदि इत्यादि और उनके अनुसार फिर वही स्थिति हो जाती है। वो स्थिति जो उस समय हमारी थी वो स्थिति हमारी फिर जागृत में रह पाती नहीं, ये स्थिति। अब यहां पर संकेत करते हैं कि ये जो स्थिति इस हृदय के अंतर्गत आकाश में ही होने वाली है। कहां होती है? हृदय के अंतर्गत जो आकाश, उस आकाश के अंतर्गत ही स्थिति यह होती है। अब थोड़ा सा यहां विचार करें, थोड़ा विलक्षण लगेगा। जब वही मन कैसा था, अंतःकरण तो वहां है, आकाश भी वहां है, इसका तो अभाव नहीं हुआ। हमने एक कर्ण करके उसका उपशम माना है। क्या माना है? उपशम है ना, अर्थात उसका समन, कार्य से उसकी रहतता। अब यहां पर जो आकाश है और उस आकाश के अंतर्गत क्या है, जिस मनोमयता की चर्चा की, तो मनोमयता का मतलब बतलाया प्रचुरता। अब प्रचुरता है, अधिकता है, लेकिन वो अधिकता का सदा रहना और सदा है न रहना, ये दोनों ही बातें हैं जो है उसमें कैसे है सिद्ध हो जाती, कभी रहती हैं कभी नहीं रहती। लेकिन वो मनोमयता भी जो है वो वास्तव में है क्या? यथार्थ उस मन की भी जो स्थिति है वो क्या है, मन भी क्या? तो क्या कहोगे? सुसुप्ति में आपको मन दिखाई नहीं दे रहा था कि दिखाई दे रहा था, मन का अनुभव नहीं हो रहा था, और जागृत में उसी का अनुभव होने लगा। ठीक है, अब जो सुसुप्ति में जिस मन का आपको अनुभव नहीं हो रहा था और जागृत में उसका अनुभव हो रहा है, तो सुसुप्ति में जब अनुभव नहीं हो रहा था और जागृत में उसका अनुभव हो रहा है, और जागृत में अनुभव होने पर वहां पर उसके नाना प्रकार के धर्म भी देखे जा रहे हैं, विच्छेद भी देखा जा रहा है, अन्य भी स्थितियां देखी जा रही हैं, और जो है राग द्वेष लोभ मोह आदि सारे के सारे भाव देखे जा रहे हैं, लेकिन वहां पर ये कोई भी धर्म दिखाई नहीं देते। तब वहां पर एक ही रूपता थी, जो रूपता क्या थी, तो क्या कहोगे, शांत कह दो या आनंद रूपता उसे कहती हो, सुखद रूपता थी। और उसी सुखद रूपता जो सुसुप्ति में थी, जागृत में क्या हुआ, कहने लगे वही आनंद रूपता अब कैसी हो गई? कहा मन के आकार की हो गई, मनोमय हो गई, और मनोमय हो गई तो वहीं पर सारा विच्छेद कार्यकरण आदि होने लगा। तो इससे तो ये अर्थ निकला कि वह मन भी क्या है, आनंद रूप है। इसका मतलब ध्यान देना, मन भी क्या है, इसका मतलब मन भी आनंद रूप है, लेकिन उस मन की आनंद रूपता को अब पहचाने कौन, पहचानने का साधन मन ही, और मन ही है आनंद रूप। इसमें कहेंगे मन आनंदम, ठीक है, तो मन आनंद रूप है, ये कैसे पता चले? देखो सुसुप्ति का उदाहरण इसलिए बहुत अच्छा है, सुसुप्ति के अंतर्गत कुछ भी नहीं, परम आनंद रूपता, लेकिन वहां सत्ता का अभाव नहीं है, तो सत है वहां आनंद रूप है, और जहां सत है आनंद है तो सत आनंद है, वहां चैतन्य भी है, लेकिन थोड़ा ज्ञान आ गया बात अलग है। लेकिन जागृत में जो है उस आनंद की क्या स्थिति हो गई, कहा वो मन आ गया वहीं, और मन आ गया तो आनंद की विस्मृति हो गई, अर्थात मन आनंद ने ही अपने को मन रूपता दे दी। ये समझ लो मोटी भाषा में, मने मन रूपता दे दी, और जब मन रूपता दे दी तो है तो वो आनंद रूप, लेकिन अपने को क्या समझने लगा, मन रूप समझने लगा, और मन रूप समझने लगा तो आनंद की खोज करने लगा। किसकी खोज करने लगा? सुख की खोज करने लगा। और जब सुख की खोज करने लगा तो सुख का प्रारूप क्या है, तो आगे इसी में बतलाएंगे पंक्त कर्म को लेकर के, इसी सप्तमन वाक में बताने जा रहे हैं। तो अब जो है उस मन ने जब अपने की अपनी सत्ता स्वीकार कर ली तो वही जो है आनंद को खोजने लगा। अब आनंद ये कौन है, जिस आनंद ही मन हुआ और मन ही आनंद की खोज कर रहा। मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए मैता कह दी, मन वह आनंद ही मन रूप हो गया। और जैसे ही आनंद मन रूप हुआ तो खोज किसकी करने लगा, कहा आनंद की खोज करने लगा। और वो आनंद है कहां, तो वहीं पर। इसके लिए संत लोग एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते, वो उदाहरण क्या कि एक अचल सिंह जो था, वह अचल सिंह जब छोटा था तो उसने जो है पद्मावती का नाटक किया, छोटा बच्चा था 8-10 साल का, और नाटक किया तो उसके पिता ने, बड़ा सुंदर नाटक हुआ, बड़ी सुंदर लीला हुई, उसके पिता ने उसके उस समय चित्र ले लिए, उन चित्रों को सुरक्षित रख लिया, सुरक्षित रख लिया। लेकिन वो धीरे धीरे वह पुत्र जो है विवाह हो गया, युवराज के योग्य हो गया। उधर उसके पिता की अवस्था काफी हो गई थी तो वो जो है जाने लगा। उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और कहा कि भाई देखो, हमारी अब स्थिति जाने वाली है, हमारा जो पुत्र है यह पुत्र युवराज बनेगा, लेकिन आप जो है हमारे इस खजाने के अंतः जो कमरा है उस कमरे की चाबी इसको नहीं देना और उस कमरे को इसके सामने नहीं खोलना, ऐसा उसने कहा। और ऐसा कहकर के उसने प्राणों का त्याग कर दिया, वो तो चला गया। अब जो है वो उसके जाने के बाद जो है वो युवराज उस पर बैठ गया। उसने जो है प्रधानमंत्री को बुलाया और कहा कि मंत्री जी, अब जो है खजाने आदि की जो सारी स्थिति मुझे अवगत कराओ, चाबियां लेके आओ, सब कच्छ दिखलाओ। तो उसने बहुत समझाया कि महाराज, हम जो है सारी की सारी जो संपत्ति आदि की स्थिति है वो सब आपको बतलाए देते, इतना इतना है, ऐसा ऐसा है, आपको देखने की कोई जरूरत। उसने कहा नहीं, जो है राजा मैं हूं कि तुम हो। तो ले आया चाबी, दिखाने लगा, सारे कमरे दिखाए, सारा खजाना दिखलाया। अंत में जिस कमरे के लिए उसने कहा था कि उस कमरे को मत दिखाना, जब कांच का ताला खोलो, तो उसने कहा महाराज इसमें कुछ भी नहीं है, इसको खोलने की कोई जरूरत नहीं। उसने फिर डांटा तो उसने कहा महाराज मैं इसलिए हट कर रहा हूं, आपके पिताजी ने कहा था कि जब तक इसकी शादी न हो जाए और जब तक ये राज्य को ठीक ढंग से न संभालने लगे तब तक इस कमरे की चाबी इसको, अर्थात इस कमरे को नहीं खोलना, इसलिए मैं जो है दुराग्रह कर रहा हूं। उसने कहा नहीं नहीं, अब राजा मैं हूं, इसको खोलो। तो और उसकी जिज्ञासा, उसने खुलवाया,